नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत लगभग 2,585 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना है। इससे लघु जल विद्युत क्षेत्र में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है, जो स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक होगा। सरकार ने टोल अनुपालन और डिजिटल प्रवर्तन को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2026 के संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये संशोधन बकाया उपभोक्ता शुल्क के मामलों में एक संरचित रिकवरी तंत्र प्रदान करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपभोक्ता शुल्क की कुशल और पारदर्शी वसूली सुनिश्चित करना भी है। नियम 14 के अंतर्गत अधिसूचित बकाया उपभोक्ता शुल्क की रिकवरी के लिए संरचित तंत्र में प्रौद्योगिकी संचालित इलेक्ट्रॉनिक नोटिस ई नोटिस प्रणाली शामिल है। इस प्रणाली में पंजीकृत वाहन मालिकों को वाहन विवरण, तिथि और स्थान तथा देय धन राशि निधिकृत करना होगा। संशोधन के अनुसार ई नोटिस के जवाब में बकाया देय उपभोक्ता शुल्क वास्तविक टोल शुल्क का दुगुना होगा। रिशु की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया क्षेत्र से 48 निर्धारित और विशेष उड़ानें संचालित करेंगे। दोनों एयरलाइंस जेद्दा और मस्कट के लिए अपनी नियमित सेवाएं जारी रखेंगे, जिनमें भारत और जेद्दा के बीच 16 उड़ानें शामिल हैं। कतर के रास लफान औद्योगिक शहर पर कल ईरान द्वारा मिसाइल हमले किए गए, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया है। कतर की सरकारी तेल कंपनी कतर एनर्जी ने एक बयान में कहा कि व्यापक नुकसान होने के कारण आग को काबू में करने के लिए आपात प्रतिक्रिया टीमें तत्काल तैनात की गई हैं। कंपनी ने बताया कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिकों, सैनिकों और सुरक्षा अधिकारियों तथा उनके कर्मचारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पिछले साल मणिपुर में असम राइफल्स ट्रक पर घात लगाकर हुए हमले के मामले में प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए आतंकवादी संगठन के 3 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इस हमले में अर्धसैनिक बल के 2 जवान शहीद हो गए थे। एनआईए की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कल इम्फाल स्थित एनआईए विशेष न्यायालय में दायर आरोप पत्र में तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूएपी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या का दौरा करेंगी। वे उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति सबसे पहले अयोध्या पहुंचेंगी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगी। वे मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर दर्शन और आरती में भाग लेंगी तथा श्रीराम यंत्र स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे मथुरा वृंदावन के लिए रवाना होंगी। चैत्र नवरात्रि का पावन उत्सव आज से शुरू हो गया है। 9 दिवसीय पर्व को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग है। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चंद, नवरेह और साजिबू चेरोबा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर एजेंसी समूह की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत बाल जीवन रक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी उदाहरण बनकर उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार नवजात मृत्यु दर में लगभग 70% की गिरावट आई है, जो 1990 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 57 मौतों से घटकर 2024 में 17 रह गई है। इसी तरह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में और भी अधिक 79% की कमी दर्ज की गई है, जो 1990 में 127 से घटकर 2024 में 27 रह गई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के शुरुआती कुछ मैचों में ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे। अभिषेक शर्मा टीम के उप कप्तान रहेंगे। पैट कमिंस अभी तक पीठ की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।